124 पेज पे थे, और हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? सूरत अल अराफ का नज़मे जली फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं, और इस फ्लो चार्ट में हम देख रहे हैं कि जो पहली आयत से लेके आखिरी आयत तक तरतीब के साथ सारी आयतों में जो मज़ामीन आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आइए इसको कंटिन्यू करते हैं, और एक एक चीज़ हमारे लिए नसीहत वाली है। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे। हम पॉइंट नंबर 2 पे शुरू करेंगे। पहला पॉइंट पूरा हो चुका है साहबे आराफ से, अब अगला देखते हैं आयात 59 से 64। यहाँ से दूसरा टॉपिक है, इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और कौम नूह की हलाकत का जिक्र किया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 3500 कबल मसीह की दावत तौहीद और इसके जवाब में इनकी कौम के काफिर सरदारों जिनको मला कहते हैं, इनके रवैयों का जिक्र हुआ, जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को गुमराह करार दे दिया था। आयात 59 से 63, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब पर उस अंधी कौम को गर्क कर दिया गया। ये किस आयत की बात है? 64। आप देखिए कि हज़रत नूह का जहाँ भी नाम आता है ना, तो मेरे दिल में आता है मैन ऑफ पेशेंस, सब्र का मजमूआ। यानी इस शख्स में अज़म और इस्तकलाल इतना था कि इन्होंने नतायज की परवाह किए बगैर अल्लाह की बात करते ही रहे, करते ही रहे, तो अल्लाह ने इसमें इनका तذकरा किया। फिर इसके बाद तीसरा पैराग्राफ देखिएगा, 65 to 72 है, हज़रत हूद की दावत और कौम आद की हलाकत। कौम नूह के बाद कौम आद गालिबन 3000 कबल मसीह को इनका जानशीन बनाया गया। इस जालकुम खुलफा मिन बादी कौमी नूहिन, इस कौम के काफिर सरदारों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को बेवकूफ़ और काजिब करार दिया। हज़रत हूद की कौम कौम आद ने आबा परस्ती को छोड़ने से इनकार किया, तौहीद की दावत को मुस्तरद कर दिया। इन्हें तारीख से सबक लेने और आला उल्लाही को याद रखने की नसीहत की गई। फस्कुरु आला अल्लाह, ठीक है, बस याद रखो या याद करो अल्लाह की नेमतों को। आयत 69 है। हज़रत हूद और अहले ईमान को बचाकर काफिर कौम को हलाक कर दिया गया। आयत 72 में है ये बात। तो क्या पता चला कि इन आयात में कौम आद, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र है। चौथा टॉपिक देखिए, आयत 73 से 79 है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत और कौम समूद की हलाकत। कौम हूद के निजात याफ्ता अफराद शिमाली इलाकों में जाकर आबाद हो गए और ये समूद कहलाए। इनका ज़माना गालिबन 2800 कबल मसीह या फिर 2500 कबल मसीह, काफ मीम के हज़रत ईसा के आने से पहले। ठीक है, फिर ये कौम भी मतकबिर होती गई। इनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह को दावत तौहीद के साथ मबऊस फरमाया और अल्लाह की निशानी एक ऊँटनी से दूर रहने और फसाद फिलर से बचने का हुक्म दिया। आयत 73 से 74। कौम के मुतकब्बिर सरदारों मला ने ईमान लाने वाले कमज़ोर तबके से तकब्बुर का इजहार किया और ऊँटनी को मार डाला और अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। आयत 77 78, जिसके नतीजे में एक जलजला जिसको रजफा कहा गया इसके ज़रिए हलाक किया गया। 79। तो क्या पता चला कि इस हिस्से में कौमें समूद का तस्करा है। फिर पांचवा टॉपिक देखिए, आयत 80 से 84 है, कौम लूत और हज़रत लूत का जिक्र, यानी हज़रत लूत की दावत और कौम लूत की हलाकत। इसके बाद उर्दन की सरजमीन, उर्दन को क्या कहते हैं आज? जॉर्डन। हाँ, बिल्कुल करीब है, यहाँ से दूर नहीं है। इसके बाद उर्दन की सरजमीन में हज़रत लूत को गालिबन 2100 कबल मसीह, ये BC क्या है? बिफोर क्राइस्ट। उर्दू में लिखेंगे तो काफ मीम कबल मसीह, और इंग्लिश में लिखेंगे तो BC बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट हज़रत ईसा को कहते हैं, और बिफोर बने पहले। और इसी तरह जो हज़रत ईसा के बाद का दौर आता है उसको क्या कहते हैं? AC। AC ये नहीं है जो घरों में लगे होते हैं, AC आफ्टर और B बिफोर। ठीक है, जिनकी कौम औरतों की बजाय मर्दों से दिलचस्पी रखती थी, ये घिनौना जुर्म पहले किसी और कौम से सरजद नहीं हुआ था। इस मुजरिम कौम को एक ख़ास पथरीली बारिश से हलाक किया गया जिसमें हज़रत लूत की काफिर बीवी भी शामिल थी। अल्लाह ने हज़रत लूत और इनके दीगर घर वालों को बचा लिया। आयत 83 से 84। तो आप जानते हैं कि कौम लूत का फ़ेल कितना घिनौना और गंदा फ़ेल था। आज दुनिया में अक्सरियत इस फ़ेल की मुर्तकिब नहीं हुई, बल्कि अब इसको एक फ़ैशन और आने वाले दौर में इसको ज़रूरत और उससे अगले दौर में इसको हक समझा जाएगा। और लिख के रख लीजिए, अगर हमने अपने बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग ना की तो कल आने वाली नस्लें इसको एज़ अ हक इस्तेमाल करेंगी। अल्लाह ताला हमारे दिलों में ईमान डाल दे और हम अल्लाह की बात को अपने बच्चों के दिलों में डालने का ज़रिया बन जाएँ। फिर आयत 85 से 102 है छठा टॉपिक, और उसमें फिर दो सब टॉपिक्स हैं। जेली क्या होता है? सब, यानी उसके अंदर दो छोटे टॉपिक हैं। कैसे? आयत 85 से 93 में हज़रत शुएब की दावत और कौम शुएब की हलाकत का जिक्र है। कौम मदियन में हज़रत शुएब गालिबन 1300 कबल मसीह ने, यानी ये 1300 कबल मसीह, ये उनका टाइम इरा है जिस वक़्त वो आए थे, उन्होंने ना सिर्फ दावत तौहीद पेश की बल्कि इन्हें सही तोलने, घाटा ना देने और फसाद ना करने की नसीहत की और राहजनी से रोका। आयत 85 से 86 है, जिसके जवाब में इनकी कौम के सरदारों, जिनको मला कहा जाता है, उन्होंने इन्हें जिला वतनी की धमकी दी और कहा कि दोबारा हमारे मजहब में वापस आ जाओ। आयत 88, हज़रत शुएब ने तौहीद पर साबित कदमी का मुजाहरा किया और अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त की। आयत 89, कौम शुएब को भी दहला देने वाली आफत यानी रजफा ने ऐसा हलाक कर दिया गोया कभी बसे ही ना थे। आयत 91, तो ये पहला टॉपिक कौम शुएब का था, लेकिन जो इसी हिस्से का सेकंड सब टॉपिक क्या है, आयत 94 से 102, पिछली पांच कौमों की हलाकत पर तबसरा। अल्लाह ताला का एक असूल ये भी है कि वो कौमों की हलाकत से पहले रजू इल्लाह के लिए तंगियों और सख्तियों की आजमाइश से दो चार करता है, फिर रिस्क की फरावानी होती है। ये बड़ा अल्लाह का अहम असूल है जिस पे लोग गौर नहीं करते। ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं मुसीबतों से कैसे निपटे, इस एक असूल पे आधी बुक, कि अल्लाह बंदे को कैसे पहले कभी तंगियों में डालता है फिर आसानियों में डालता है, और बंदा है कि समझता ही नहीं। कुछ बच्चे होते हैं घूरे हैं उसको तो दबक जाते हैं, कुछ होते हैं घूरी से नहीं दुबकते, आप उनको मारते हैं फिर डर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना घूरी से दुबकते ना मार से ना प्यार से दुबकते। आज हमारा ये हाल हो चुका है, हमें नहीं पता हम पे खुशियाँ क्यों आ रही हैं, हमें ये नहीं पता हम पे गम क्यों है, बीमारियाँ क्यों हैं, दुख क्यों है। तो अल्लाह की ये सुन्नत है, दोबारा सुन लीजिए, कौमों की हलाकत से पहले, यानी इससे पहले कि अल्लाह हमें हलाक कर दे, अल्लाह हम पे कोई मुश्किल तंगी प्रॉब्लम डालता है ताकि हम सुधर जाएं, लेकिन अगर ना सुधरे तो फिर आखिरी फैसला तो वही है। तो लिहाजा इन दोनों किस्म की आजमाइशों में कौमों की नाकामी पर कौमों को हलाक कर दिया जाता है। आयत 95 है, ईमान और तकवा दो ऐसी नेमतें हैं जिसकी बदौलत ज़मीन और आसमान से बरकात का नज़ूल होता है, लेकिन तकजीब और बदअमली एक ऐसी लानत है जिसके सबब कौमों पर अजाब नाजिल होता है। इसकी दलील क्या है? आयत 96, वलौअन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस्समाई वलर्दी वलाकिन कज़्ज़बू फ़ख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। और अगर बेशक अहले बस्ती ईमान लाते और तकवा अख्तियार करते, अलबत्ता हम खोल देते उन पर बरकतें आसमान और ज़मीन से, लेकिन उन्होंने झुटलाया, पस हमने पकड़ लिया उनको उस वजह से जो कुछ वो कमाते थे। ठीक है, यानी उनके गुनाहों पे उनको पकड़ लिया। तो कुरैश और सारी कायनात को पांच कौमों यानी कौम नूह, आद, समूद, लूत और कौम शुएब के इंजाम से इबरत हासिल करने, अल्लाह ताला की कुदरत अजाब और कानून अजाब से डरने का हुक्म दिया गया। तो क्या पता चला इस हिस्से में फिर कौम शुएब और ख़ास तौर पे फिर पांच कौमों की हलाकत का तस्करा था। इसके बाद सातवां टॉपिक आयत नंबर 103 से 171 तवील आयात हैं। इसमें हज़रत मूसा की दावत, फिरौन की हलाकत और बनी इसराइल के हालात मौजूद हैं। इसके फिर चार सब टॉपिक हैं, यानी बुनियादी टॉपिक में से चार ज़ेली टॉपिक क्या हैं। नंबर एक, आयात 103 से 137 103-137 में हज़रत मूसा की दावत और फिरौन की हलाकत का तذکرہ है। हज़रत मूसा ने फिरौन को तौहीद की दावत दी और बनी इसराइल को अपने साथ ले जाने की दरख्वास्त की। फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ से निशानियों का मुतालबा किया गया। आयत 106, हज़रत मूसा ने असौर जदे बैज़ा के मौजज़ात पेश की। आयत 108, फिरौन ने हज़रत मूसा पर जादू यानी साहिर होने का इल्ज़ाम आयद किया। आयत 109, और ये भी कहा कि ये तुम्हें अपनी ज़मीन से बेदखल करना चाहता है। फिरौन ने हज़रत मूसा को शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ शहरों से जादूगर तलब किए। जादूगर और मूसा के मुकाबले के लिए ख़ास दिन का इंतखाब हुआ। मुकाबले में हज़रत मूसा के असा ने जादूगरों के जादू को शिकस्त से दोचार किया, तो जादूगर मुसलमान हो गए, फिरौन सीख पा हो गया। सीख पा क्या होता है? पाँव पटकना, यानी जल गया भुन गया। ठीक है, पा पाँव को कहते हैं। क्या पता चला कि इधर फिरौन के जादूगरों का ईमान एकदम जो अल्लाह ने उनके दिलों में डाला, ये इस बात की दलील है कि उनके दिलों में तासुब नहीं था। आज भी कुरान और दीन की दावत पे, इस्लाम की दावत पे वो लोग ज़रूर तवज्जो देते हैं जिनके दिल तासुब से खाली होते हैं, और इसका अपोजिट भी है। फिर इसी तरह फिरौन ने जादूगरों से पूछा कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर मूसा के खुदा पर ईमान ले आए हो। आयत 123 है। फिरौन ने जादूगरों के हाथ पांव काट देने और सूली पर लटकाने की धमकी दी। आयत 124। मुसलमान हो जाने वाले जादूगरों ने ईमान पर बेमिसाल साबित कदमी का मुजाहरा किया और अल्लाह की मदद की दरख्वास्त की। 126। फिरौन के दरबारी सरदारों यानी मल्ला की शर अंगेजियाँ अपना रंग दिखाने लगी। क्या आप मूसा और उनकी कौम को यूं ही ज़मीन पर फसाद के लिए छोड़ देंगे जबकि वो आपके खुदाओं यानी आले हक का कायल नहीं है। वक़ाल अल-मलअ मिन कौमि फिरौन अतज़र मूसा व कौमहु लियुफ़सिदु फिल अर्दि व यज़रक व आलिहतक। फिरौन ने धमकी दी कि हम इनके लड़कों को कत्ल करेंगे और हम इन पर गालिब हैं। आयत 127। हज़रत मूसा ने अपनी कौम बनी इसराइल को ताल्लुक़ बिल्ला और सब्र का हुक्म दिया और खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन को हलाक करके तुम्हें ज़मीन पर जानशीन बनाएगा। इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्दा लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी। आयत 128। कानून खुदाबंदी के मुताबिक आले फिरौन को भी कहत में मुबतला किया गया ताकि वह रुजू इल्लाह करें। इन पर तूफान, टिड्डी दल, सरसरियों, मेंढकों और खून का अजाब मुसल्लत किया गया। 133। इन तमाम दलाइल के बावजूद उन्होंने तकब्बुर का मुजाहरा किया। फिरौन और आले फिरौन जुनूदे फिरौन की हलाकत हुई और सब्र इस्तकामत के नतीजे में कमज़ोर कौम यानी बनी इसराइल को मशरक़ व मगरब में जानशीनी अता की गई। वाउरसनल कौमल्लज़ीन कानू युस्तदअफून मशारिक अल-अर्दि व मगारिब अल्लती बारकना फ़ीहा वतम्मत कलिमत रब्बिक अल-हुस्ना अला बनी इसराइल बिमा सबरू व दम्मरना मा काना यस्नउ फिरौन व कौमहू। आयत 137 है। जी कोशिश कीजिए इसका तर्जमा करने की।
वाओरसना और हमने वारिस बनाया अल कौम लजीना कौम उन लोगों के कानू वो जो सब थे युस्तज़अफ़ूना कमज़ोर समझे वो सब कमज़ोर समझे जाते मशारिक मशरिक अल अर्जी ज़मीन की व मग मशारिक अल अर्जी मशरिक ज़मीन के व मगारिबा और उसके मगरिबों अल्लाती जो बारकना हमने बरकत दी फी हा इसमें व तम्मत और पूरी की कलिमात रब्बी का बात तेरे रब की अल हुस्ना बेहतरीन आला पर बनी इसराइल के बीमा बसबब इसके जो सबर उन सब ने सबर किया व दम मरना और हमने काट दी माकाना जो थे यसना वो बनाते फिरौन और उसकी कौम।
ठीक है जी। आयत 138 से 157 पर मुश्तमिल दूसरे ज़ैली पैराग्राफ में खुरूज के बाद बनी इसराइल की नाफरमानियों का तذکرہ। खुरूज यानी जब वो वहाँ से निकले और हलाकते फिरौन के बाद बनी इसराइल जब वादी सीना में दाखिल हुए तो इनका गुजर एक बुत परस्त कौम पर से हुआ। ये मंज़र देख कर बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से कहा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहतुन हमारे लिए भी इस तरह का एक बुत बना दीजिए। आयत 138 है। ये एक नाशुक्री कौम थी जो तौहीद के सबक को बहुत जल्द फरामोश कर चुकी थी। इस मुतालबे पर हज़रत मूसा बहुत बरहम हुए और तौहीद पर इस्तकामत का हुक्म दिया। 140। हज़रत मूसा 40 दिन की किरारदाद पर गए। हज़रत हारून को अपना जानशीन बनाया। अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की। हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी तुम मुझे नहीं देख सकते। हज़रत मूसा ने इसरार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया पहाड़ की तरफ देखो अगर वो अपनी जगह कायम रहा तो कुछ मुद्दत बाद तुम मुझे देख सकोगे। जब अल्लाह ताला ने पहाड़ पर तजल्ली की तो वो रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। इफाका हुआ तो फरमाया सुबहानक तुबतु इलैक तू बेऐब है तेरी ही तरफ मैं रजू करता हूँ और मैं सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को अलवाह यानी तख्तियाँ और वो असल में क्या थी तौरात तौरात से नवाजा और इन पर साबित कदमी से पैरवी और शुक्र का हुक्म दिया। हज़रत मूसा की गैर मौजूदगी में सामरी ने जेवरात से बछड़े का एक पुतला बनाया और कौम ने इसकी पूजा शुरू कर दी। जब हज़रत मूसा वापस आए तो कौम के शिर्क पर शदीद नफरत का इजहार किया और गज़ब का मुसाहरा किया। भाई पर भी बरहम हुए। हज़रत हारून की वजाहत पर हज़रत मूसा ने अपने और भाई के लिए इस्तग़फ़ार किया। बछड़े को खुदा बनाने वालों को दुनियावी अजाब से दोचार किया गया। आयत 152 में है। हज़रत मूसा ने 70 आदमियों का इंतखाब किया और मीकात पर पहुँचे। वहाँ एक सख्त जलजले से आजमाइश की गई। हज़रत मूसा ने दुआएं की और अजाब टल गया। आयत 155। बनी इसराइल को किस्सा मूसा और बनी इसराइल से इबरत हासिल करने और नबी उम्मी की पैरवी का हुक्म दिया गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि कौमों के किस्से बुरे हुए किस तरीके से उनको अल्लाह ताला ने एक ज़रबुल मिसल बना दिया। और इसके बाद फिर अगला टॉपिक क्या हुआ, आखिर में सूरत की जो आखिरी आयतें हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 नुकाती मिशन की वजाहत। एक आयत है जैसे कि हमने ऊपर भी इस पर बात की थी, 2 आयतें हैं बेसिकली, लेकिन उसमें नबी सल्लम के 6 काम, यानी ये आपको सबको ज़ुबानी याद होनी चाहिए आयत, ख़ास तौर पर रबी अव्वल के महीने में जब लोग नबी सल्लम का तذکرہ करना और सुनना पसंद करते हैं, तो उस वक़्त आप उनके साथ ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी का मिशन किन 6 नुकात पर मुश्तमिल था। वट आर द 6 थिंग्स दैट द प्रॉफिट सल्लम हैज़ बीन डन। नंबर 1, अमर बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म, इसमें तो किसी को कोई वहाम, कोई शुबा, कोई शक नहीं। नंबर 2, नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना, डोंट्स, यानी जो कुरान के अंदर है। तीसरी चीज़ तहलील तय्यबात, तहलील क्या थे, हलाल करना तय्यबात। मक्का वालों ने बहुत सारी पाक चीज़ों को खुद पे हराम कर लिया था, अल्लाह के नबी ने आकर वो हराम चीज़ें हलाल की, जिस पे आपको याद होगा सूरत माईदा में भी, सूरह बकरा में भी, और वो सारी चीज़ें जिसका तذکرہ आता है कि साहिबा और बहीरा और हाम और साम, यानी अपनी मर्ज़ी से किसी जानवर को हराम कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से हलाल। चौथा आपका काम क्या था, तहरीम खबाइस, खबीस चीज़ों को आपने हराम करार दिया, जिसमें एक शराब थी, जुआ था, सूद था, तो लोगों ने गलत चीज़ों, नापाक चीज़ों को हलाल किया हुआ था, अल्लाह के नबी ने आकर उसको हराम करार दिलवाया। और पांचवी चीज़ थी अकायद ओहाम, ओहाम कहते हैं वहम की जमा, अकायद अकीदे से, यानी अकायद और ओहाम के बोझ के अलावा समाजी और माशी जुल्म इस्तेहलाल के फंदों से इंसान को निजात दिलाई, यानी तौक और बोझ जो गलों और कंधों पे थे उसको उतार दिया। यानी रस्म व रिवाज, बेटियों को जिंदा दफन करना, ये भी एक रस्म थी उस दौर की, अल्लाह के नबी ने इससे ख़त्म किया। काली बिल्ली रास्ता काट जाएगा तो मनहूस होगा, इस तरह की वहमी बातें थी। तो ये 6 चीज़ें आपने की थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों और मदद करने वालों और इन पर नाजिल करदा नूर यानी कुरान की पैरवी करने वालों के लिए कामयाबी की बिशारतें दी गईं, आयत 157। फिर इसी तरह आयत 158 में बनी इसराइल को भी बनी इस्माइल के उम्मी नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत दी गई है। अल्लाह की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाशिगाफ ऐलान करने की हिदायत की गई कि मैं ज़मीनों आसमान के बादशाह की तरफ से सारे इंसानों के लिए एक रसूल हूँ, 158। फिर आयत 159 से 171 पर मुश्तमिल चौथे ज़ेली पैराग्राफ में बनी इसराइल की नाफरमानियों का जिक्र है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की 12 ख़ानदानों में तकसीम कर दी, हर ख़ानदान के लिए एक अलग चश्मा जारी कर दिया, मनोसलवा का नज़ूल हुआ, बनी इसराइल को हत्तातुन कहने का हुक्म दिया गया, लेकिन बनी इसराइल ने तहरीफ की। असाबे सब्त का वाक़या बयान किया गया कि किस तरह बनी इसराइल का इम्तहान लिया गया। सब्त के दिन मछलियाँ ज़्यादा आती थीं, बनी इसराइल हीलों और बहानों से काम लेकर हराम चीज़ों का अपने लिए हलाल कर लिया करते थे, इनकी नाफरमानियों के सबब इन्हें बंदर बना दिया गया। फलम्मा अतौ अम्मा नहू अनहू कुलना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासीन, आयत 166। ज़रा से इसके तर्जमे पर गौर कीजिएगा, थोड़ी सी इसमें गलती लग जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा, पस जब अताऊ, जब उन्होंने नाफरमानी की, अम्मा नहू अनहू, उससे जिससे वो रोके गए थे, कुल न लहुम, तो हमने कहा उनको कूनू हो जाओ, किरदतन खासेन, बंदर दुदकारे हुए। बदकिस्मती से बनी इसराइल में नाहल जानशीन पैदा हुए, दुनिया में गिरफ्तार हुए और झूठी तवक्कुआत इन्हें ले डूबी कि हमारी मगफरत हो जाएगी क्योंकि हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ व वरिसुल किताब व याख़ुज़ून अरादा हाज़ल अदना व यक़ूलून सयुग़फ़रु लना। अल्लाह ताला ने इस गलत फहमी का इजाला किया कि नस्ल की बुनियाद पर मग़फ़रत नहीं होगी, बल्कि जो लोग अल्लाह की किताब और नमाज को मजबूती से थामे रखेंगे, ऐसे साले अफराद के अमाल का अजर इनको दिया जाएगा। वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब वअक़ामुस्सलाता इन्ना ला नुदीउ अजरल मुस्लिहीन, बेशक वो लोग जो मजबूती से थाम लेते हैं किताब को और कायम करते हैं नमाज, बेशक हम नहीं ज़ाया करते अजर इस्लाह करने वालों का। तो यहाँ पे ये टॉपिक पूरा हुआ। आखिरी टॉपिक, 8th टॉपिक कह लीजिए, 172 से 206, जो कि ये सूरत अल अराफ की आखिरी आयात हैं, इस पे अख्तितामी है, कंक्लूजन। पूरी सूरत में इतनी कौमों का जिक्र है, ये अब नज़्म जली पढ़ते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि सूरत में क्या कुछ है। आप देखिए, एक स्ट्रेच में जब सूरत की सारी चीज़ें आती है तो वाकई एहसास नहीं हो रहा कि एक बकेट है और उसमें इतना कुछ डाला हुआ है। कभी ऐसा होता है कि एक बकेट उसमें एक ही चीज़ होती है, जैसे सूरत यूसुफ, पूरी सूरत में एक ही किस्सा है यूसुफ का, लेकिन सूरत अल अराफ को पढ़ते हुए लग रहा है कि मुख्तलिफ चीज़ें उस बास्केट में डली हुई हैं, क्या कुछ है। तो ये आखिरी आयात में क्या है? नंबर 1, 172 से 198 पर मुश्तमिल आयात महद अलस्त का जिक्र है। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहों को पैदा करके इनसे पूछा, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या नहीं हूँ मैं तुम्हारा रब? उन्होंने जवाब दिया, बला, हाँ हाँ क्यों नहीं। और यह अहद रोज़े क़्यामत के लिए तमाम हुज्जत है, यानी क़्यामत के दिन इस अहद की बुनियाद पर अल्लाह ताला जन्नत या जहन्नम देगा। फिर तौहीद की दलील फराहम की गई और शिर्क को बातिल किया गया। तौहीद इंसानी फितरत में दाखिल है और इसके ऐन मुताबिक है। एक दुनियादार मादा परस्त आदमी का किस्सा खूबसूरत तमसील से पेश किया गया, 173 से 175। ये वही शख्स है जिसकी ज़ुबान लटकती थी और कुत्ते की मिसाल दी गई वहाँ। इस शख्स को अल्लाह ने अपने आयात और अपने अहकामात से नवाजा था, लेकिन इसने शैतान की पैरवी इख्तियार की। यह आयात इलाही की पैरवी करके रिफ़त और बुलंदी हासिल कर सकता था, लेकिन ज़मीन से चिमट बैठा। वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्दी, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने लगा। वत्तबअ हवाहु, और कुत्ते की सी ज़िंदगी गुजारने लगा। फ़मसलुहु कमसलिल कल्बी, जो हड्डियों और कुतिया की तलाश में हर वक्त ज़ुबान लटकाए रहता है और राल टपकती है। 176। दुनियादार मादा परस्तों को मकसद हयात पर गौर करने की दावत दी गई। बहुत से बेमकसद इंसान और जिन मवेशियों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी बदतर, ये जहन्नुम की खेती हैं। 179। बड़ी खूबसूरत आयत है, इसका भी नंबर याद करके आप इसको याद कर सकते हैं कि कौन सी आयत है कुरान में जिसमें अल्लाह ने इंसानों को जानवरों से तशबीह दी है। कल अनाम बल हुम अदल, तो वो सूरत आराफ 179, ये फेमस आयतों में से। अल्लाह ताला को इसकी हसीनो जमील सिफात पर मुश्तमिल नामों से पुकारने और ख़ुद साख्ता नामों से इज्तनाब का हुक्म दिया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को जुटलाने वालों के लिए तबाही की वईद है। आयत 183 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी दीवानगी यानी जुनून का असर नहीं, वो तो नज़ीर व मुबीन है। आयत 184। क़्यामत के दिन का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है, कुरैश मक्का को नहीं बताया जा सकता है। आयत 187। तौहीद इख्तियार की वजाहत की गई, नफ़ा और नुकसान का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ही के पास है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं है। तौहीद इल्म की वजाहत की गई, रसूलुल्लाह के पास भी गैब का मुकम्मल इल्म नहीं, वरना वो अपने लिए बहुत सा खैर जमा कर लेते और इनको कोई नुकसान न पहुँचता। वलौ कुन तअलमुल गैब लस्तकसरतु मिनल खैरि वमा मस्सनियस्सू। आयत 188। और अगर मैं होता जानने वाला गैब का, अलबत्ता बहुत ज़्यादा तलब कर लेता मैं खैर में से और ना छूती मुझको कोई तकलीफ। तो ये कितना बड़ा अकीदे का एक बाब है कि अल्लाह के नबी को भी नहीं पता था जब तक के अल्लाह ना बताए। इसके बाद इख्तितामी आयात हैं। तौहीद के अनफुसी दलाइल फराहम किए गए, तमाम लोग आदम से पैदा किए गए, हर एक का जोड़ा बनाया गया ताकि वो सुकून हासिल करे। 189। तौहीद पर कायम रहने और शिर्क से बचने का हुक्म दिया गया और गैरुल्लाह की बेबसी और लाचारी की तस्वीर खींची गई। अल्लाह के अलावा लोग जिन्हें पुकारते हैं वो भी अल्लाह के इबाद यानी बंदे हैं, खालिक नहीं है, कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। अयुशरिकून माला यखलुकु शैय्यं वहुम युखलकून, गैरुल्लाह ना तो इनकी मदद कर सकते हैं ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं। वला यस्ततियून लहुम नसरम वला अनफुसहुम यंसुरून। फिर आयत 199 से 206 जो आखिरी आयते हैं, बहुत ही खूबसूरत आयते हैं, 8 आयते हैं ये। कह लीजिए कि अल्लाह के नबी और मुसलमानों को एक एजेंडा दिया गया, हिदायत दी गई, क्या दावत और तबलीग का काम जारी रखो, इनकार करने वालों के साथ नरमी इख्तियार करो, अमर बिल मारूफ का फरीजा सर अंजाम देते रहो, कुरान की तिलावत को खामोशी और पूरी तवज्जो से सुनो, सुबह शाम गफलत की ज़िंदगी से इज्तनाब करते हुए दिल और ज़ुबान से भी और हल्की आवाज़ में जिक्र करने की हिदायत दी गई। खुजिल अफ, ए नबी नरमी और दरगुजर का तरीका इख्तियार कीजिए। वामुर बिल उर्फी, मारूफ की तलकीन किए जाओ। वारिद अनिल जाहिलीन, जाहिलों से ना उलझिए। वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानी नज़्ग़ुन फ़स्तईज़ बिल्लाह, शैतान के उकसाहटों पर पनाह हासिल कीजिए। व इज़ा क़ुरियल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू, जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनिए। वन से तू आय 204 खामोशी इख्तियार कीजिए। वस्कुर रब्बा कफ़ी नफ्सी का तदर्रुआ वखीफ़तम वदूनल जहरी मिनल कौल मिनल कौली बिल गदू बी वल आसाल, दिल ही दिल में खौफ और गिरिया के साथ सुबह शाम अल्लाह को याद कीजिए। और वला तकुम मिनल गाफिलीन, अल्लाह की याद से गफलत इख्तियार करने वालों में हरगिज़ शामिल ना हो। तो ये थी सूरत अल अराफ। मरकजी मजमून क्या निकला फिर? कानून हलाकत अक्वाम और कानून ने इस तबदाले अकवाम को समझकर 6 रसूलों की दावत तौहीद यानी तारीख़ दावत और 6 अकवाम की हलाकत से इबरत हासिल करनी है। तौहीद को साबित किया गया, शिर्क को बातिल किया गया और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लम पर ईमान लाने का हुक्म है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इल्मी पुख्तगी दे दे, हमारा दिल दिमाग ऐसे इस इल्म को ले ले कि बिल्कुल जैसे तहें लगती हैं। ठीक है, चलिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाब रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।